पहला सैमुअल अध्याय 28 पद 1 से लेकर पद 4 तक में। उन दिनों के फिलिस्तियों ने इसराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकिश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकिश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकिश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा, निजी अंगरक्षक। शमूएल तो मर गया था और समस्त इसराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी। और शौल ने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शौल ने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। अब गिलबो गलीली के समुद्र के दक्षिण की तरह ऊंचाई में बसा हुआ क्षेत्र है। अतः फिलिस्तियों ने इसराइल के विरुद्ध सच में एक बहुत लंबा रास्ता तय किया था। असल में गिलबो का एक हिस्सा जर्दन नदी से मिलता है, इसलिए फिलिस्तियों ने इस जगह का बहुत बड़ा क्षेत्र ले लिया था। शौल एक बहुत छोटे से क्षेत्र में बंद हो गया था, उसने वहां गिलबो में छावनी डाली थी। अध्याय 28 पद 5 और पद 6 में। फिलिस्तियों की सेना देखकर शौल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। और जब शौल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उर्रिम के द्वारा और ना भविष्यत वक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीके से बात करता है। परमेश्वर हमसे सपनों के द्वारा बात करता है। अब मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप में कभी कोई सपना नहीं देखा है जिसका कोई आत्मिक अर्थ या महत्व हो। परंतु मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूं और जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे। हो सकता है कि एक दिन मैं भी आत्मिक अर्थ वाले स्वप्न देखने शुरू कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जबकि मेरे विचारों के अनुसार मैंने कभी आत्मिक अर्थ वाले सपने नहीं देखे, लेकिन मुझे ये समझने से नहीं रोक सकता कि एक दिन मैं एक सपना देखूंगा जिसका अर्थ आत्मिक होगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अभी भी लोगों से सपनों के द्वारा बात करते हैं और मैं उस सपने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर मेरे साथ सपनों में बात करेगा तो मैं बहुत रोमांचित और खुश नसीब होऊंगा। परमेश्वर लोगों से दर्शन के द्वारा भी बात करता है। अब मैंने भी दर्शन देखा है जिसमें परमेश्वर ने मुझसे बातें की। परमेश्वर लोगों से भविष्यत वक्ताओं के द्वारा बात करता है और मैंने परमेश्वर का वो वचन पाया है जो मसीह में अभिषेक भाइयों और बहनों के द्वारा मेरे पास आया, जिसे मैंने अपने लिए आए परमेश्वर के वचन के रूप में पहचाना। पुराना नियम में परमेश्वर उरिम और तुमिम के द्वारा भी बातें करता था, जो कि याजक के वस्त्रों का एक हिस्सा होता है। ये एक तरह का छोटा तैला होता था जो वे पहना करते थे। कहा जाता है वहां एक काला और एक सफेद पत्थर है। काला पत्थर नहीं के लिए था और सफेद पत्थर हां के लिए था। दरअसल मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी तरह परमेश्वर उरिम और तुमिम के द्वारा बातें करता था। अब इन शब्दों की सही में अर्थ होता है ज्योति और पूर्णता, और हो सकता है ये पत्थर ही हो जो एक तरह से एक रीति की तरह बन गए थे। ये ऐसा होता होगा कि याजक जो पहनता होगा वो चीज चमकती होगी। लेकिन परमेश्वर शौल की प्रार्थनाओं का उत्तर किसी भी रूप में नहीं दे रहा था, जिसका वे अभ्यास करते थे कि जाने कि परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। परमेश्वर से बात करने में मेरी रुचि है, जबकि परमेश्वर ने उनमें से कुछ से स्वर्ग दूतों के द्वारा बातचीत की थी, परंतु परमेश्वर लगातार दृढ़ता से मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। मैं सोचता हूं कि ये ही वो स्थान है जहां आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने, सीखने और जानने की शुरुआत करनी है। आपको वचन में रहना है और परमेश्वर को अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने का मौका देना बहुत महत्वपूर्ण है। अतः परमेश्वर शौल की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा था। अध्याय 28 पद 7 से लेकर पद 10 तक में। तब शौल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उसे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने कहा, एंदोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शौल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शौल ने क्या किया है कि उसने ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शौल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। अब यहां शौल में एक विचित्र प्रकार का दोगलापन था। वो एक भूत सिद्धि करने वाली से बात कर रहा है और यहोवा की शपथ खा रहा है कि अगर वो उसके कहे अनुसार करेगी और उस आत्मा को जिसे वो चाहता है अपनी भूत सिद्धि के द्वारा बुलवाएगी तो उसका कुछ बुरा नहीं होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, वो परमेश्वर की शपथ खा रहा था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके आत्मिक जीवन में मिलावट है, उनकी आत्मिक बातों में पूरी तरह से असमंजस है, वे आत्मिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा है जैसा वे एक बैंक लूटने की योजना बनाते हैं और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस काम में सफलता दे, हमारी मदद कर या हमारी सहायता कर कि हम इस काम को सफलतापूर्वक कर सके। ये सच में एक भूल, एक बड़ी गलती, एक भ्रम है। वो एक ऐसी स्त्री के पास जाता है जो शैतान या बुरी आत्मा से भरी है। असल में उसका मतलब यही है, एक जानी पहचानी आत्मा, एक दुष्ट आत्मा से भरी स्त्री के पास वो राय लेने जाता है और एक आत्मा को बुलवाता है। अध्याय 28 पद 11 से लेकर पद 19 तक में। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलवाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शौल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शौल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शौल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष भागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शौल ने निश्चय जानकर कि वो शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शौल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शौल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इसराइली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। अब क्या शमूएल सच में वापस आया था? क्या इस भूत सिद्धि करने वाली स्त्री ने सच में किसी आत्मा को मृतकों में से बुलाया था? मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस कहानी में जैसे ये लिखी गई है अविश्वास का कोई कारण नहीं दिखता। मैं हमेशा ये मानता हूं कि आसानी से समझ में आने वाले अनुवाद सही अनुवाद होते हैं। अगर आप इस लेख की कोई और व्याख्या करना चाहेंगे तो वो उचित नहीं होगा। मैं इन बातों को तो नहीं समझता, परंतु मैं मान सकता हूं कि जैसे यहां लिखा है वैसे ही हुआ था, अर्थात शमूएल की आत्मा आई थी और वो शमूएल ही था जिसने शौल से बातें की थी। शमूएल की आत्मा बुलाई गई और ये दूसरी दुनिया से आत्माओं का सच्चा अनुभव था, क्योंकि जो कुछ हुआ था उससे ये दिखता है कि वो भूत सिद्धि करने वाली स्त्री खुद भी बुरी तरह चौंक गई थी। जब उसने शमूएल को देखा तो वो चिल्लाई, ऐसा लगता है कि वो हमेशा जिस आत्मा के जरिए का प्रयोग करती थी वो एक विशिष्ट आत्मा थी जो उन्हें सूचनाएं देती थी। आत्मिक संसार की बातों में सच्चाई है, लेकिन बाइबल के द्वारा आपको इस तरह की बातों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। सच तो ये है कि मनुष्य जिस आत्मा से संपर्क करना चाहता है उसके स्थान पर दुष्ट आत्मा आ जाता है। आत्मा जो कई युगों से आत्मिक परिमंडल में रहने के कारण बहुत सारी बातों को जानने में सक्षम होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की सच्चाई को बताने में सक्षम है। आपके बीते हुए समय को भी, जिसे कोई कभी नहीं जानता था। ज्यादातर लोग इस तरह की बातों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला उनको नाम बता पाता है और उनके बचपन के अनुभव बता पाता है कि किसी समय उनका व्यवहार कैसा था जिसे आपने अपने हृदय में कैद कर रखा था। वे बातें जो आपने किसी को कभी नहीं बताई थी और इस आत्मा ने मुझे सब बातों को बता दिया और मुझे ये सब प्रकट कर दिया, और आप बहुत उत्तेजना से भरकर सोचने लगते हैं, ओह असल में मेरा संबंध मेरी माँ की आत्मा से हो गया है, क्योंकि ये ऐसी बात है जो मैं और मेरी माँ ही जानती थी। ऐसा नहीं है, आत्मा भी इसे जानती है। इसी कारण वे उन बातों को जो अपने पहले की थी, उन अनुभवों को जो आपके पहले के थे और उन घटनाओं को जो कभी घटी थी आपको फिर से सुनाने में सक्षम होते हैं। आपके किसी प्रिय की आत्मा जो मर चुका है कोई रूप धारण कर लेती है। यहां प्रेत आत्माओं में सच्चाई है और स्त्री के पास भी एक परिचित आत्मा या एक आत्मा थी और उस आत्मा द्वारा वो स्त्री जानकारी पाने में सामर्थ होती थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आत्मिक परिमंडल में खेलते हैं और उनमें से कुछ इन आत्माओं का पथ प्रदर्शक की तरह उपयोग करते हैं जो उन्हें लिखने में और उनकी कलात्मक बातों में रास्ता दिखाती है, और लोग इसी तरह के अनेक बातों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं होती है जो रूप धारण कर लेती है और अपने को पिछले जन्म का दर्शक कहती है। दुष्ट आत्माओं का और वैसे ही दैवीय आत्माओं का भी संसार है जो अभी भी परमेश्वर की आज्ञाकारी है, लेकिन ये वो संसार है जिसे ना खेलने की, जिसमें ना पढ़ने की हमें चेतावनी दी गई है। सच्चाई ये है कि वे एक इंसान को सम्मोहित करके सालों पीछे ले जा सकती है। उनके जन्म से भी पहले के समय में वे उन्हें ले जाती है और वे तब मान लेते हैं कि वे अपने पिछले जन्म में आ गए हैं। और इस तरह का बकवास ये सिर्फ ये साबित करता है कि शैतान हमारे चारों तरफ है और वे लोगों को धोखा देने के लिए और लोगों की प्रताड़ना के लिए हर प्रकार के ढोंग का प्रयोग कर सकता है। अब ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जब शमूएल वापस आया तो ये स्त्री चौंक गई और अचंभित हो गई थी। वो अपने परिचित दुष्ट आत्मा के मार्गदर्शक से बात करने की आशा कर रही थी और अपनी दुष्ट आत्मा से वो सूचना लेने की आशा कर रही थी जो शॉल चाहता था। लेकिन जब असल में ये आत्मा पृथ्वी से बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और जब उसने ये देखा तो वो चिल्लाई। अचानक से उसे ये समझ में आया कि वो शॉल है। शमूएल ने शॉल से बात करना शुरू कर दी और परमेश्वर ने ये होने दिया। अब शमूएल पृथ्वी में से बाहर आया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले हर कोई जो मर गया वो अधोलोक में चला गया, जो पृथ्वी की भीतरी हिस्सा है या पृथ्वी के दिल में चला गया। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले अधोलोक दो विभिन्न भागों में बांटा था, जैसा यीशु के द्वारा लूका की इंजील उसके 16वें अध्याय में बताया गया था। एक भाग था जहां इब्राहिम उन लोगों को शांति दे रहा था जो विश्वास में मरे थे। दूसरा हिस्सा था जहां पापी लोग पीड़ा या यातना की दशा में थे। यीशु ने इसके बारे में लूका की इंजील में बहुत साफ शब्दों में कहा है। यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद या यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के समय वे जो इब्राहिम के साथ आराम में थे और अधोलोक के उस पहले हिस्से में थे वे भी यीशु के साथ उठा लिए गए और स्वर्गिक आनंद में चले गए। जैसा कि पौलुस ने हमें इफिसियों की किताब के 4 अध्याय में बताया है, वो जो उठाया गया वही है जो सबसे पहले पृथ्वी के निचले भाग में उतारा गया और जब वो उठाया गया तो वो बंदियों को भी अपने साथ बांध ले गया। ये यशया 61 की भविष्यवाणी को पूरा करता है जो बताती है वो बंधनों को खोलेगा और उन्हें जो बंधुआई में है छुटकारा देगा। इसलिए उसने उन्हें स्वतंत्र किया जो मृत्यु के द्वारा बंधुआई में थे। मत्ती की किताब के 27वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, और बहुत पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई और उसके जी उठने के बाद वे यरूशलेम की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। अतः शमूएल पृथ्वी से बाहर आता है, शॉल से बात करता है और उसको बताता है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। कैसी भयानक बात! लेकिन आप देखिए, आप क्या आशा कर सकते हैं? ये वो आदमी था जिसने पहले परमेश्वर को छोड़ा था। क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। क्योंकि तुमने परमेश्वर को त्यागा, परमेश्वर ने तुम्हें त्याग दिया, और कल तुम और तुम्हारा बेटा मेरे साथ यहां होंगे। अध्याय 28 पद 20 से लेकर पद 25 तक में तब शौल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल कुछ भी न रहा। तब वो स्त्री शौल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा, तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं ना खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर उसे यहां तक दबाया कि वो उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंदा और अखमीरी रोटी बनाकर शौल और उसके सेवकों के सामने लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए।